समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी को का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे में। आज के अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
हेलो जया, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इन टू अस दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। As always, there's plenty of news, local and international, then a stop at our metro cities, followed by weather. And later to the history of the day. So, Jaya, let's start with some news headlines.
बिल्कुल सुभद्रा, लेकिन इससे पहले मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में बहुत कुछ है, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। और अब नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने उद्यमशीलता के सफर से जुड़े अनुभव भी साझा करेंगे।
Yes, marking a decade of the Startup India initiative, National Startup Day is being observed on the 16th of this month, that is today. Launched in 2016 to energize entrepreneurship, the initiative has today evolved into one of the world's largest and most diverse startup ecosystems, playing a pivotal role in India's journey towards Viksit Bharat 2047.
Over the last decade, the Startup India initiative has emerged as a key pillar of the nation's economic transformation, employment generation, and inclusive growth. As of December last year, the nation is home to over 2 lakh recognized startups, placing it among the leading startup ecosystems globally. Major hubs such as Bangalore, Hyderabad, Mumbai, and Delhi NCR continue to lead the momentum. Nearly 50% of startups are now emerging from Tier 2 and Tier 3 cities, reflecting the growing democratization of entrepreneurship across the country. Meanwhile, women-led entrepreneurship has also gained strong momentum, with more than 45% of recognized startups having at least one woman director or partner. Startups are making a tangible impact across sectors such as agriculture, healthcare, education, clean mobility, digital finance, and tourism, helping bridge the rural-urban divide. Led by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, the initiative has evolved into a comprehensive support framework offering funding access, mentorship, and market linkages. The country's unicorn landscape reflects this growth, expanding from just $4 billion companies in 2014 to over 120 today, with a combined valuation exceeding $350 billion. The country's startups are driving innovation, creating jobs, and shaping a future-ready economy with flagship schemes such as the Fund of Funds, Startup India Seed Fund Scheme, Credit Guarantee Scheme, and Startup India Hub. With Ishani Yadav, Priya Mondal for Aaj Saveri.
निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब लोग 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी कि CEO के अनुरोधों और अन्य प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद संशोधित समय सीमा तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने CEO को दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि में विस्तार के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
The National Testing Agency NTA has decided that all candidates scheduled to appear for G-Main 2026 Session 1 examination in West Bengal on the 23rd of January 2026 will be allotted another date of examination among the advertised dates. The decision was taken in view of the Saraswati Puja celebrations in the state on the 23rd of this month. In a social media post, the NTA said that it received representations from candidates of West Bengal regarding the festival celebrations. NTA has advised candidates to email at gmain@nta.ac.in or call at 011-407-59000 for any query.
इसराइल की राजधानी तेल अविव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इसराइल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों तथा समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की 24 घंटे काम करने वाले हेल्पलाइन नंबरों 972-54-752-0711 और 972-54-32-7893-92 पर संपर्क कर सकते हैं या consvan.telaviv@mea.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
इंडियन कोस्ट गार्ड ICG has intercepted a Pakistani fishing boat with 9 crew inside Indian waters near the international maritime boundary line in the Arabian Sea. According to the Indian Coast Guard, the Pakistani boat named Al Madina was sighted by an ICG ship on Wednesday. On being challenged, the boat attempted to flee towards Pakistan side. However, the ICG ship intercepted and boarded the boat in Indian waters, and a total of 9 crew were found inside the Pakistani boat. The boat was then towed to Porbandar port by ICG ship for thorough rummaging and joint interrogation by concerned agencies.
अब श्रोताओं कुछ काम की खबर देख लें कि सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक संदेश का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उपयोगकर्ताओं को अपना आधार अपडेट करने के लिए APK फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। वीडियो में कहा गया है कि अगर आधार अपडेट नहीं किया गया तो SBI योनो ऐप ब्लॉक हो जाएगा। प्रेस सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया है और लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार का APK फाइल डाउनलोड न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत बैंकिंग या आधार संबंधी जानकारी साझा करें।
Getting to some sports news now. In the ICC Men's Under-19 Cricket World Cup 2026, India beat USA by 6 wickets using DLS method in the opening match of the tournament at the Queen's Sports Club in Bulawayo, Zimbabwe yesterday. Put in to bat first, the USA were bowled out for just 107 runs in 35.2 overs as India's Henil Patel completed his 5-wicket haul. In response, India lost Vaibhav Suryavanshi's wicket early, but then a spell of rain reduced the game to 37 overs.
और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। तो शुरुआत सुभद्रा चेन्नई से।
यस, सदर्न रेलवे विल रेनोवेट रिटायरिंग रूम्स एंड डॉमेट्रीज एट MGR चेन्नई सेंट्रल स्टेशन टू प्रोवाइड अ लग्जरी होटल लाइक एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स। द स्टेशन हैज 9 एयर कंडीशन्ड रूम्स, 23 बेड air-conditioned male dormitory and a 5 female dormitory at the concourse level at a price of ₹500 for 3 hours. The unused vacant space at the concourse will also be developed to provide a premium experience to passengers looking for a short stay ahead of a long journey. The railways will outsource the facility to an agency. Those with prior experience in the hospitality sector can participate in the open tender, develop the facility and maintain it for 5 years, which can be extended by up to 4 years. The aim is to provide passengers with a more comfortable, contemporary and pleasant stay experience in line with the present day standards. We have another one from Chennai. The Greater Chennai Corporation has made parking arrangements to ease traffic congestion and ensure smoother access to the seafront. In the absence of adequate parking along the beach, the civic body earmarked a 10,000 square meter area near Anna Memorial Park for two-wheelers. Executive Engineer Muthaya said that the park can accommodate 50 cars, 50 vans and 50 tourist buses. The parking fee has not been fixed. Moving on to Bengaluru now. Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil has informed that the state received investment proposals of 4.71 lakh crore rupees out of 10.27 lakh crore rupees committed at the Global Investors Meet held in February last year. Out of 5.66 lakh crore rupees investment commitments in the manufacturing sector, 3.22 lakh crore rupees has materialized. In the renewable energy sector, 1.41 lakh crore rupees has come in against the commitments of 4.25 lakh crore rupees. In the infrastructure development sector, out of 0.45 lakh crore rupees commitment, 0.085 lakh crore rupees investment are received. The minister said that over 150 services across 30 departments were integrated to rapidly process the investment applications, issue clearances and approve land allotment through a fully digital single window system. M.B. Patil informed that he will visit the World Economic Forum in Davos from January 19 to 23 for the state's investment progress. We have one more from the south, that's Hyderabad. Telangana Chief Minister A. Ravanth Reddy has requested army officials to appoint special officers to resolve pending issues, mainly related to land allotment and the sanction of Sainik schools through continuous deliberations. The Chief Minister held a civil-military liaison conference yesterday in Hyderabad. State Chief Secretary K. Ramakrishna Rao, General Officer Commanding Telangana Andhra Sub-Area Major General Ajay Mishra, State DGP Shivadhar Reddy and several senior officials from the state government and the army attended the meeting. The state government and army officials discussed defence land allotment in Telangana for development projects and pending administrative issues relating to the state administration and the army. And Jaya, over to you now for rest of the news, Mumbai, Kolkata and Delhi.
बिल्कुल सुभद्रा, तो शुरुआत दिल्ली से करते हैं। राजधानी दिल्ली में भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई कार्यों के कारण मुकनपुर, झरोदा कलां, नथुपुरा और प्रधान कॉलोनी इलाके में आज जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों से पानी इकट्ठा करके रखने की सलाह दी है। आवश्यकता पड़ने पर लोग पानी के टैंकर मंगवा सकते हैं। दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास, जो है 53वां विश्व पुस्तक मेला की, जो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। इस मेले के माध्यम से भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। मेले के छठे दिन यानी कल का हाल जानने के लिए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
मेले के छठे दिन भी लोगों और पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ अलग अलग प्रकाशकों के स्टॉल पर देखी गई। मेले में सभी उम्र के लोग अपने और अपने प्रियजनों के लिए किताबें खरीदते हुए नजर आए। इस वर्ष 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक मेले में भाग ले रहे हैं। मेले का विशेष आकर्षण भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमता के 75 विषय पर आधारित प्रदर्शनी है। इसके तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित 500 से अधिक पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है। इस थीम पवेलियन में चयनित प्रदर्शनियां, पोस्टर, डॉक्यूमेंट्री और अधिष्ठापन है। मेले में वंदे मातरम के 150 वर्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के 150 साल पूरे होने पर खास प्रदर्शनियां भी लगाई गई है। इसके अलावा मेले का एक और आकर्षण राष्ट्रीय ई पुस्तकालय भी है, जो 6000 मुफ्त ई पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करने वाला एक डिजिटल पुस्तकालय है। यह 9 दिवसीय मेला इस महीने की 18 तारीख तक चलेगा। आदित्य प्रताप सिंह।
अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आम चुनाव की खबर है। इस चुनाव के लिए कल हुए मतदान के बाद आज वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना सुबह 10 बजे से शहर भर के 23 निर्धारित केंद्रों पर शुरू होगी। इसके लिए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि 759 पर्यवेक्षक, 770 सहायक और 770 सहायक कर्मचारियों को तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं, मीडिया के लिए अलग क्षेत्र और कम्प्यूटरीकृत परिणाम संकलन की भी व्यवस्था की गई है। केवल अधिकृत उम्मीदवारों, प्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त मीडिया को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इस चुनाव में कुल 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। एक और खबर महाराष्ट्र से, जहां कंदिवली और बोरीवली के बीच छठी रेलवे लाइन के लिए चल रहे कार्यों के कारण वेस्टर्न सब अर्बन लाइन की 240 लोकल ट्रेनें 2 दिनों तक रद्द रहेंगी। रेलवे के अनुसार बोरीवली मलाड खंड में भारी अवरोध के कारण कल 120 और रविवार को भी 120 ट्रेनें रद्द रहेंगी। अब चलते हैं सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हावड़ा और असम के कामाख्या को जोड़ने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अन्य रेलगाड़ियों में न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार SMVT बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस और राधिका SMVT बेंगलुरु मेल एक्सप्रेस तथा बालूरघाट SMVT बेंगलुरु मेल एक्सप्रेस शामिल है। इससे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यात्रियों का आवागमन संपर्क बेहतर होगा। प्रधानमंत्री रविवार को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें हावड़ा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच, सियालदा और वाराणसी के बीच तथा संतरागाछी और ताम्बरम के बीच रेलगाड़ियां शामिल हैं। इन रेलगाड़ियों के शुरू होने से यात्री कम समय में गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और सुभद्रा के साथ। तो कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो राजधानी दिल्ली में आज सुबह के समय शीतलहर और दोपहर से पहले तक शीतलहर चलने का अनुमान है। शहर में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। मुंबई में ठंड का बहुत ज्यादा असर नहीं है, आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगर कोलकाता की बात करें तो सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
Yes, Jaya. Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius. The maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist in the morning, early morning, and the minimum temperature was 16 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The minimum temperature will hover between a minimum of 18 degrees Celsius and a maximum of 32 degrees Celsius. And now let's get to some history.
बिल्कुल, तो अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को अब याद करने का समय है और आज 16 जनवरी 2026 है, लेकिन भारत के इतिहास में 16 जनवरी की तारीख देश की एक बेटी की उल्लेखनीय उपलब्धि की साक्षी है। उस बेटी की जिसने अमेरिका जाकर अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा किया। उसके दृढ़ता और परिश्रम को देख अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उन्हें 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए चुना। जी हाँ, हम कल्पना चावला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष की दूसरी बार उड़ान भरी। हालांकि उनकी उड़ान अंतिम साबित हुई, क्योंकि 16 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटते हुए 1 फरवरी को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और चालक दल के अन्य 6 सदस्यों के साथ उनकी भी मौत हो गई थी।
1605, the first modern novel was published, the first edition of Don Quixote by Miguel de Cervantes in Madrid, Spain. And in 1761, the British East India Company captured the city of Pondicherry from the French. And 1920, this day, the League of Nations holds its first council meeting in Paris, France.
अगर इससे कुछ वर्षों पहले चले तो 1681 में शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था, जिसके बाद वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। वहीं कुछ दिनों बाद 1769 में पहली संगठित घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स रेस कलकत्ता के निकट आगरा में आयोजित की गई थी। 1955 में पुणे में खड़सवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ, जो कि विश्व की पहली त्रिसेवा अकादमी है, जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं।
एंड 1979, BBC's iconic nature series Life on Earth presented by David Attenborough was first shown on BBC One.
अगर 1992 में भारत और ब्रिटेन के बीच एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो अपराधियों को प्रत्यर्पित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है, और 1996 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 100 से अधिक नई आकाशगंगा को खोज निकालने का दावा किया था। अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद महादेव गोविंद राणा जी को। आज ही के दिन 1901 में इनका निधन हुआ था। नाशिक के निफड़ तालुके में जन्मे राणा जी को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया और समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राणा जी ने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया, वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। जस्टिस गोविंद राणा जी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे और अपने जीवन काल में महादेव गोविंद रानाडे ने कई सार्वजनिक संगठनों के गठन में योगदान दिया.
And friends, from Justice Ranade to another distinguished lawyer, one of India's most powerful distinguished lawyers, Nanabhai Nani Palkhivala. We remember him on his birth anniversary today. Palkhivala cemented his reputation as one of India's most eminent jurists and an expert in economic affairs. His knowledge on matters related to the constitution and tax matters was unparalleled. He is lauded for his pivotal role in Keshav Nanda Bharti case, where he helped establish the basic structure doctrine, safeguarding India's constitution from unlimited parliamentary amendments. He was a staunch defender of civil liberties, a brilliant economist, and a public educator through his writings, advocating for liberal values, limited government, and fiscal prudence, leaving an indelible mark on India's legal and political landscape.
आज ही पुण्यतिथि है बांग्ला के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की. चट्टोपाध्याय भारतीय साहित्य के उन चमकते सितारों में से एक हैं जिन्होंने बांग्ला साहित्य को यथार्थवाद की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. 15 सितंबर 1876 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर में जन्मे इस उपन्यासकार ने अपनी रचनाओं के जरिए समाज की गहराइयों को छुआ. देवदास, परिणीति, परिणीता और श्रीकांत जैसी कालजयी उपन्यासों के रचयिता शरद चंद्र ने महिलाओं की पीड़ा, सामाजिक कुरूतियों और मानवीय भावनाओं को अपनी लेखनी में उतारा. चट्टोपाध्याय अकेले ऐसे भारतीय कथाकार भी हैं जिनकी अधिकांश कालजयी कृतियों पर फिल्में बनी तथा अनेक धारावाहिक सीरियल भी बने. देवदास पर बंगाली, हिंदू, तेलुगु, तमिल, उर्दू, असमिया और मलयालम सहित कई भाषाओं में 15 से अधिक बार बन चुकी है. सबसे अधिक हिंदी और बंगाली फिल्म आई गई. पीसी बरुआ द्वारा 1936 में देवदास पर पहली बोलती फिल्म बनाई गई. सुनते हैं ये गीत जिसके बोल लिखे हैं केदार शर्मा ने और आवाज दी है केसी दे ने. इससे पहले 1928 में देवदास पर मूक फिल्म बनी थी. 1955 में बिमल रॉय के निर्देशित और दिलीप कुमार पर फिल्माई गई फिल्म देवदास सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती है. 2002 की फिल्म देवदास का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और इसका निर्माण भारत शाह ने किया था. सुनते हैं ये गीत.
And friends, 1931, birth anniversary of Dr. Subhash Mukherjee, scientist and physician, known for creating the world's second and India's first child using in vitro fertilization, also known as test tube baby. Unfortunately, his success was not recognized by his own countrymen, but then his achievements had been acknowledged by a reputed international publication, the Dictionary of Medical Biography. I can never remember being afraid of an audience. If the audience could do better, they'd be up here on stage and I'd be out there watching them. So said Ethel Merman, the American musical theater actress, singer, whose real name was Ethel Agnes Zimmerman, who earned the title of the undisputed first lady of musical comedy stage. Known for her unmistakable powerful voice, you're already listening to it right now in the background, and of course those great Broadway shows, Anything Goes, Annie Get Your Gun, Gypsy, Hello Dolly. Merman was born this day in 1908. Of course, you're listening to this beautiful track. There is no business like show business done live.
Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props.
प्रत्येक क्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नव में वारिद माला. यह पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध कविता पथिक से ली गई है, जिसमें कवि प्रकृति के मनोहरी सौंदर्य विशेषकर समुद्र तट पर बादलों और सागर के मनोरम दृश्य का वर्णन करते हुए पथिक की सांसारिक दुखों से विरक्ति और प्रकृति के साथ एकाकार होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी प्रकक्षावादी युग के महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने राष्ट्रप्रेम की कविताएं भी लिखी। आज उनकी पुण्यतिथि है। इन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न तथा मानसी। स्वप्न के लिए इन्हें हिन्दुस्तान अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के प्रचारक टीएल वासवानी की। वासवानी ने देश की स्वाधीनता के संग्राम का समर्थन किया था। इस विषय में गांधी जी के पत्र यंग इंडिया में उन्होंने कई लेख लिखे थे। भारत सरकार ने टीएल वासवानी की स्मृति में डाक टिकट भी निकाला था।
And friends, 1979, birth anniversary of Alia, American singer actress who redefined contemporary R&B pop and hip-hop with a unique blend of vocals and hip-hop flavor. Her debut album was Age Ain't Nothing But a Number. But then, friends, you know, sadly she went away in a plane crash when she was just 22 years old. You're listening to the same track, man. Here goes for Alia. ...1959, birthday of Sade, Nigerian-British singer, who is one of the most successful lady and British artists in history. With a smooth voice and a blend of soul, funk and jazz and Afro-Cuban rhythms, Sade enjoyed wide critical acclaim and popularity in the 1980s and early 90s. He has a big hit song of hers, Song by Your Side.
हम मलयालम सिनेमा के एक महान और सदाबहार अभिनेता प्रेम नजीर को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं, जिन्हें 600 से ज्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने, एक ही नायिका शीला के साथ 107 फिल्मों में काम करने और एक साल में 39 फिल्मों में आने जैसे कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इन्हें मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक माना जाता है और नित्य हरित नायकन यानी सदाबहार नायक भी कहकर पुकारा जाता है।
മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ പ്രേമ ചകോരി ചകോരി.
And friends, 6 Grammys and a Country Music Hall of Fame Award. Country musician Ronnie Millsap celebrates his birthday today. Of course, he was blind, but that did not limit his musical vision, making him a powerful figure in music history. Millsap became famous for his unique blend of country, pop, rock and roll and R&B, making him a major crossover artist. Smoky Mountain Rain, here goes.
Back to Knoxville. Found out those bright lights ain't where I belong. From a phone booth and the rain.
अपनी धुनों से कई सदाबहार गीतों को रचने वाले संगीतकार ओपी नैयर की आज जयंती है। अपने सुरों के जादू से आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे कई बैकग्राउंड सिंगर्स को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने वाले महान संगीतकार ओपी नैयर के संगीतबद्ध गीत आज भी लोकप्रिय हैं। गुरुदत्त की फिल्म आर पार उनकी शुरुआती सफल फिल्मों में से थी। सुनते हैं इस फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत। नायर ने अपने गीत के सफर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। सुनते हैं उनके सुरों में पिरोया एक और गीत रफी की आवाज में।
यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा।
आज अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी जन्मदिन है, जिन्होंने चंद फिल्मों में एक हिट हीरो के तौर पर पहचान बना ली। उन्होंने एक खास मुकाम हासिल किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। तो श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और सुभद्रा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।